दसवां अध्याय वैदिक युग का सामाजिक जीवन। पहला, वर्ण व्यवस्था। वर्ण और जाति। प्राचीन भारत का समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। इस देश के चिंतकों ने मानव समाज को चार वर्णों या वर्गों में और मानव जीवन को चार आश्रमों में विभक्त किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं। किसी भी समाज के मनुष्यों को इन चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। जो पढ़ने पढ़ाने, धार्मिक कर्मकांड का अनुष्ठान करने और धर्म मार्ग के अनुसरण के लिए प्रेरित करने के काम करे, उन्हें ब्राह्मण कह सकते हैं। देश की बाह्य और आभ्यंतर शत्रुओं में रक्षा करना और समाज में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना क्षत्रिय वर्ग का कार्य है। कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग आदि द्वारा संपत्ति का उत्पादन जिन सर्वसाधारण लोगों द्वारा किया जाए, उन्हें वैश्य कहा जा सकता है। जो अन्य तीन वर्णों के लोगों की सेवा में रहकर अपना जीवन व्यतीत करे, वे शूद्र हैं। ये चार वर्ण ऐसे हैं जो किसी भी समाज में हो सकते हैं। इन्हीं को दृष्टि में रखकर भारत के प्राचीन विचारकों ने यह प्रतिपादित किया था कि सब कोई को अपने अपने धर्म वर्ण धर्म का पालन करना चाहिए और राज संस्था का भी यह कर्तव्य है कि वह सबको अपने अपने स्वधर्म में स्थिर रखे। इसी में प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का हित एवं कल्याण है। पर वर्ण और जाति पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। वर्ण और जाति में भेद है। वर्ण संख्या में चार हैं, पर जातियों की संख्या सैकड़ों में है। कितनी ही जातियां ऐसी हैं जिन्हें किसी वर्ण के अंतर्गत किया जाए, यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कायस्थ जाति न ब्राह्मण वर्ग में सम्मिलित की जा सकती है और न क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्गों में। जाट जाति के लोगों का प्रधान कार्य कृषि है। स्मृतियों और नीति ग्रंथों के अनुसार कृषि कार्य वैश्यों का है, पर जाट कभी अपने को वैश्य कहना स्वीकार नहीं करेंगे। खत्री, अरोड़ा, महाजन सदृश अनेक जातियों के लोगों का मुख्य कार्य व्यापार है, पर वे अपने को क्षत्रिय वर्ग का समझते हैं। सैनी, कोरी, मुरई आदि जातियों के लोगों के धंधों का संबंध प्रधानतया खेती से है, पर वे वैश्य नहीं माने जाते। जुलाहों, बढ़ईयों, दर्जियों आदि की पृथक जातियां हैं, पर इन्हें चातुर्वर्ण में किस वर्ण के अंतर्गत लिया जाए, यह निर्विवाद नहीं है। जिन्हें आजकल हरिजन कहा जाने लगा है, उनके पूर्वज शूद्र वर्ण के अंतर्गत थे, यह भी सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। वास्तविकता यह है कि जाति और वर्ण न केवल एक नहीं है, अपितु उनमें कोई स्पष्ट संबंध भी नहीं है। ब्राह्मण माने जाने वाले लोगों में भी तगे, त्यागी, भार्गव तथा भूमियार सदृश ऐसी जातियां हैं जिनके कार्यों का संबंध खेती व व्यापार से है, पौरोहित्य उनका कार्य नहीं है। वस्तुतः भारत में जातियों का विकास वर्ण विभाग से सर्वथा स्वतंत्र रूप में हुआ है। प्राचीन आर्यों में जो बहुत से जन कबीले या ट्राइब थे, वे जब किसी एक प्रदेश पर अस्थायी रूप से बस गए तो उन्होंने अपने पृथक जनपद राष्ट्र या राज बनाए और कालांतर में ये ही जन पृथक जातियों के रूप में परिवर्तित हो गए। खत्री, अरोड़ा, अग्रवाल, रोहतगी, कोरी, सैनी आदि जातियों का विकास इसी ढंग से हुआ। प्राचीन भारत के सर्वसाधारण लोगों में जो जुलाहे, बढ़ई, लुहार, सुनार, धोबी, नाई आदि के धंधे करते थे, उन्होंने अपने को श्रणियों गिल्ड में संगठित किया हुआ था। अपने धंधों तथा सामाजिक आचार विचार के संबंध में वे स्वयं नियमों का निर्माण करते थे। उनके संगठन बहुत सुदृढ़ होते थे और किसी व्यावसायिक श्रेणी के किसी सदस्य के लिए अपनी श्रेणी के नियमों का अतिक्रमण कर सकना संभव नहीं होता था। कालांतर में इन व्यावसायिक श्रेणियों ने पृथक जातियों का रूप प्राप्त कर लिया, जिससे बढ़ई, जुलाहा, लुहार सदृश जातियों का निर्माण हुआ। इन जातियों को चातुर्य वर्ण के किस वर्ग में सम्मिलित किया जाए इसका कभी निर्धारण करने का प्रयत्न नहीं किया गया। समय समय पर भारत पर अनेक विदेशी जातियां आक्रमण करती रही। भारत के धर्म तथा संस्कृति को अपनाकर जो भारतीय समाज का अंग बन गई, पर इन्हें भी किसी वर्ण में सम्मिलित किया जाए यह स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका। यद्यपि कतिपय स्मृतिकारों ने इन्हें संकर जातियों के रूप में प्रतिपादित करने का अवश्य प्रयत्न किया। वर्ण और जाति के इस भेद को अपने सम्मुख रखना बहुत आवश्यक है। इसके बिना प्राचीन भारतीय समाज के स्वरूप को समझ सकना संभव नहीं है। भारतीय इतिहास के अत्यंत प्राचीन काल में जब आर्य लोग इस देश में अपने विविध जनपद स्थापित करने में तत्पर थे, तब यह क्रियात्मक तथा संभव था कि कर्म के आधार पर या बाद में कर्म के वंश क्रमानुगत हो जाने पर जन्म के आधार पर जनपद के विविध निवासियों को चार वर्णों में विभक्त किया जा सके। पर जब जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित होने लगे और कतिपय प्रतापी राजाओं ने जनपदों व महाजनपदों को जीतकर अपने विशाल साम्राज्य बना लिए और उनके निवासियों ने काम धंधों के आधार पर अपने को श्रेणियों में संगठित करना प्रारंभ कर दिया, तो समाज को चार वर्णों में विभक्त कर सकना संभव नहीं रह गया। उस समय में वह जाति भेद प्रकाश में आने लगा जो आज तक भी भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा, वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद। ऋग्वेद के समय में भारतीय आर्य चार वर्णों में विभक्त नहीं हुए थे। यही कारण है कि पुरुष सूक्त के अतिरिक्त ऋग्वेद में अन्यत्र कहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों का उल्लेख नहीं मिलता। केवल पुरुष सूक्त में समाज के स्वरूप को एक शरीर के समान प्रतिपादित करते हुए चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। वेद के अनुसार ब्राह्मण समाज के मुख हैं, राजन्य अर्थात क्षत्रिय भुजाएं हैं, ब्राह्मण समाज के मुख हैं राजन अर्थात क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं व पेट हैं और शूद्र पैर हैं। पुरुष सूक्त को प्रायः सभी आधुनिक विद्वान बाद के समय का मानते हैं। ऋग्वेद में अन्यत्र ब्राह्मणों और क्षत्रियों का उल्लेख अवश्य हुआ है, पर वैश्य और शूद्र शब्द केवल पुरुष सूक्त में ही आए हैं। इससे यह परिणाम निकाला जाता है कि इस प्राचीन वैदिक काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्वसाधारण जनता या विषह अर्थात ऋग्वेद में विषह शब्द अनेक स्थलों पर आया है से पृथक होने लग गए थे। यद्यपि अभी चातुर्य वर्ण का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था, ऋग्वेद के अनुशीलन से तत्कालीन समाज का जो स्वरूप उपस्थित होता है उसे संक्षेप के साथ इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पंचजन वैदिक युग के भारतीय आर्यजनों कबीला या ट्राइब में विभक्त हैं। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर पंचजना और पंचकृष्ट्य का उल्लेख आता है जो संभवतः उस युग के आर्यों की पांच प्रमुख जातियों कबीलों को सूचित करते हैं। ये पंचजन अनु, द्रुह, यदु, तुर्वसु और पुरु थे, पर इनके अतिरिक्त भरत, त्रितसु, श्रृंजय आदि अन्य भी अनेक जनों का उल्लेख वेदों में आया है, जिससे इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि ज्यों आर्य लोग भारत में फैलते गए उनमें विविध जनों का विकास होता गया। आर्य जाति के प्रत्येक जन में सब व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति एक समान थी, सबको एक ही विषह जनता का अंग माना जाता था। आर्य और दास आर्यों के भारत में प्रवेश के पूर्व यहाँ जिन लोगों का निवास था वेदों में उन्हें दास या दस्यु कहा गया है। इनकी अनेक समृद्ध बस्तियाँ भारत में विद्यमान थी। आर्यों ने इन्हें जीतकर अपने अधीन किया और ये आर्यभिन्न लोग आर्य जनपदों में आर्य राजाओं की अधीनता में रहने लगे। यह स्वाभाविक था कि इन दासों व दस्युओं की सामाजिक स्थिति आर्यों की अपेक्षा हीन रहे। आर्य लोग इनसे घृणा करते थे, इन्हें अपने से हीन समझते थे और इन्हें अपने समान स्थिति स्थिति देने को उद्यत नहीं थे। इसी दशा का यह परिणाम हुआ कि आर्य जनपदों में निवास करने वाली जनता दो भागों में विभक्त हो गई, आर्य और दास। दास जाति की हीन स्थिति के कारण इस शब्द का अभिप्राय ही संस्कृत भाषा में गुलाम हो गया। दास जाति के लोग शिल्प में अत्यंत चतुर थे। ये अच्छे विशाल घरों का निर्माण करते थे, शहरों में रहते थे और अनेक प्रकार के व्यवसायों में दक्ष थे। आर्यों द्वारा विजित हो जाने के बाद भी शिल्प और व्यवसाय में इनकी निपुणता नष्ट नहीं हो गई। ये अपने इन कार्यों में तत्पर रहे। विजेता आर्य सैनिक थे। वे यागिक अनुष्ठानों को गौरव की बात समझते थे और भूमि के स्वामी बनकर खेती, पशुपालन आदि द्वारा जीवन का निर्वाह करते थे। विविध प्रकार के शिल्प दास जाति के लोगों के हाथों में ही रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में प्राचीन काल से ही शिल्पियों को कुछ हीन समझने की प्रवृत्ति रही। आर्यों और दासों में परस्पर सामाजिक संबंध का सर्वथा अभाव हो यह बात नहीं थी। प्राच्य भारत में जहां आर्यों की अपेक्षा आर्य भिन्न जातियों के लोग अधिक संख्या में थे, उनमें परस्पर विवाह संबंध होता रहता था। जिन प्रदेशों में ऐसे लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती गई जो शुद्ध आर्य या दास न होकर वर्ण संकर थे, ऐसे वर्ण संकर लोगों को ही संभवतः ब्रात्य कहा जाता था। अथर्ववेद में ब्रात्यों का अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है। बाद में ब्रात्य अस्तुम यज्ञ का विधान कर इन ब्रात्यों को आर्य जाति में सम्मिलित करने की भी व्यवस्था की गई। पर इसमें संदेह नहीं कि वैदिक युग में आर्यों और दासों का भेद बहुत स्पष्ट था और उस काल में आर्य जनपदों में ये दो वर्ण ही स्पष्ट रूप से विद्यमान थे। वर्ण व्यवस्था। आर्य विश्व के सब व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति एक समान थी, पर धीरे धीरे उसमें भी भेद प्रादुर्भूत होने लगा। दास जातियों के साथ निरंतर युद्ध में व्यापृत रहने के कारण सर्वसाधारण आर्य जनता में कतिपय ऐसे वीर सैनिकों, रथी, महारथी आदि की सत्ता आवश्यक हो गई जो युद्ध कला में विशेष निपुणता रखते हों। इनका कार्य ही यह समझा जाता था कि ये शत्रुओं से जनता की रक्षा करें। छत अर्थात हानि से त्राण करने वाले होने के कारण इन्हें क्षत्रिय कहा जाने लगा। यद्यपि ये क्षत्रिय आर्य विषह के ही अंग थे, तथापि इन्हें विषह के सर्वसाधारण लोगों, वैश्यों से अधिक सम्मानित व ऊंचा समझा जाता था। क्षत्रिय सैनिकों के विशिष्ट कुल राजन्य कहते थे। संभवतः ये राजन्य ही वे राजकृत थे जो अपने में से एक को राजा के पद के लिए वरण करते थे। जिस प्रकार क्षत्रियों की सर्वसाधारण आर्य विषह में एक विशिष्ट स्थिति थी, वैसे ही उन चतुर व्यक्तियों की भी थी जो यागिक कर्मकांड में विशेष रूप से दक्ष थे। जब आर्य लोग भारत में स्थिर रूप से बस गए तो उनके विधि विधानों व अनुष्ठानों में भी बहुत वृद्धि हुई। प्राचीन समय का सरल धर्म निरंतर अधिक अधिक जटिल होता गया। इस दशा में यह स्वाभाविक था कि कुछ लोग जटिल यागिक कर्मकांड में विशेष निपुणता प्राप्त करें और यागिकों की इस श्रेणी को सर्वसाधारण आर्य विषह द्वारा क्षत्रियों के समान ही विशेष आदर की दृष्टि से देखा जाए। इस प्रकार वैदिक युग में उस चातुर्वर्ण्य का विकास प्रारंभ हो गया जो आगे चलकर भारत में बहुत अधिक विकसित हुआ और जो बाद के हिंदू व भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गया। पर वैदिक युग में यह भावना होने पर भी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्वसाधारण विषह वैश्य जनता से उत्कृष्ट व भिन्न है, जाति भेद या वर्ग भेद का अभाव था। कोई व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय है, इसका आधार उसकी योग्यता या अपने कार्य में निपुणता ही थी। कोई भी व्यक्ति अपनी निपुणता, तप व विद्वता के कारण ब्राह्मण पद को प्राप्त कर सकता था। इसी प्रकार आर्यजन का कोई भी मनुष्य अपनी वीरता के कारण क्षत्रिय व राजन्य बन सकता था। वैदिक ऋषियों ने समाज की कल्पना एक मानव शरीर के समान की थी, जिसके शीर्ष स्थानीय ब्राह्मण थे, बाहु रूप क्षत्रिय थे, पेट व जंघाओं के सदृश स्थिति वैश्यों की थी और शूद्र पैरों के समान थे। संभवतः आर्य भिन्न दास लोग ही शूद्र वर्ण के अंतर्गत माने जाते थे। यद्यपि आर्य लोग दास जातियों के व्यक्तियों को अपनी तुलना में हीन समझते थे, पर उन्हें अस्पृश्य नहीं माना जाता था। कतिपय दास परिवार अच्छे समृद्ध भी थे और आर्य ब्राह्मण उनसे दान दक्षिणा ग्रहण करने में भी संकोच नहीं करते थे। ऋग्वेद में के एक मंत्र में बलभूत नामक दास द्वारा एक ब्राह्मण को 100 गांवें दान में दिए जाने का उल्लेख है। कतिपय मंत्रों में दासों के हित सुख के लिए भी प्रार्थना की गई है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोगों की स्थिति का आधार जन्म को नहीं माना जाता था। यागिक कर्मकांड तथा सैनिक कार्य में विशिष्टता के कारण ही कतिपय लोगों को ब्राह्मण तथा क्षत्रिय समझा जाता था और उनकी स्थिति अन्य आर्य विषय की तुलना में ऊंची मानी जाती थी। संपूर्ण आर्य विषय एक है, यह भावना ऋग्वेद के काल में भली भांति विद्यमान थी और चातुर्य वर्ण का उस रूप में अभी विकास नहीं हुआ था जैसा कि बाद के काल में देखा जाता है। उत्तर वैदिक युग में चातुर्य वर्ण का विकास, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद के अनेक मंत्रों में चारों वर्णों का उल्लेख है। इससे सूचित होता है कि इन वेदों के समय में वर्ण भेद भली भांति विकसित हो चुका था। यागिक कर्मकांड का जो जटिल रूप इस काल में विकसित हो गया था, उसमें यह स्वाभाविक था कि ऋत्विक, अधर्वयु, ब्रह्मा आदि के रूप में यज्ञ की विविध प्रक्रियाओं के विशेषज्ञ होने लगे, जिनकी स्थिति समान आर जनता से अधिक ऊंची हो। अरण्यों व आश्रमों में निवास करने वाले ब्रह्मवादियों और तत्व चिंतकों को भी ब्राह्मणों के इसी वर्ग में गिना जाने लगा और इस प्रकार यागिकों तथा मुनियों के एक नए वर्ग का प्रादुर्भाव हो गया। विविध आर्यजनों कबीलों ने जब सप्त सिंधव देश से आगे बढ़कर पूर्वी और दक्षिण भारत में फैलना शुरू किया तो वहां के मूल निवासियों से उन्हें युद्ध करने पड़े। इस दशा में जो रथेष्ठ अर्थात रथी और राजन्य युद्ध में विशेष योग्यता प्रदर्शित करते थे और जिनके पराक्रम के कारण ही आर्यों के लिए नए नए प्रदेशों को अधिगत कर सकना संभव था, उनके द्वारा भी एक नए वर्ग का विकास हुआ जिसे क्षत्रिय कहा जाता था। इस वर्ग के व्यक्तियों की स्थिति भी सर्वसाधारण आर्य विषय की तुलना में अधिक ऊंची थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त जो सर्वसाधारण आर्य जनता थी, उसमें सब प्रकार के शिल्पी, वणिक, कृषक, पशुपालक आदि सम्मिलित थे और उसे विषय या वैश्य कहा जाता था। समाज में जो सबसे निम्न वर्ग था और जो आर्य गृहस्थों की सेवा में दास, कर्मकर आदि के रूप में कार्य करता था, उसे शूद्र कहते थे। तीनों उच्च वर्णों के बालक अपने अपने कुलों के लिए उपयुक्त विद्या ग्रहण किया करते थे और यज्ञोपवीत धारण कर द्विज बनने का अवसर प्राप्त करते थे। विद्या द्वारा मनुष्य दूसरा जन्म प्राप्त करता है यह विचार उस समय में भी भली भांति विकसित हो चुका था। यज्ञोपवीत को द्विजत्व का चिन्ह माना जाता था। तैत्रीय ब्राह्मण में ब्राह्मण के लिए सूत के, क्षत्रिय के लिए सन के और वैश्य के लिए ऊन के यज्ञोपवीत का विधान किया गया है और साथ ही यह भी लिखा गया है कि ब्राह्मण का वसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का शीत ऋतु में उपनयन होना चाहिए। इससे विदित होता है कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के समय में वर्ण भेद ने अच्छा विकसित रूप प्राप्त कर लिया था, पर अभी वर्ण भेद ने न अधिक जटिल रूप ही प्राप्त किया था और न उसका आधार पूर्णतया जन्म को ही माना जाता था। अनुश्रुति के अनुसार विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था, पर ब्राह्मण वशिष्ठ के स्थान पर राजा सुदास ने उन्हें अपना पुरोहित बनाया था। अनेक ऐसे क्षत्रिय राजा थे जो अध्यात्म तथा दार्शनिक चिंतन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ब्राह्मण लोग भी उनके पास जाकर इन विषयों की शिक्षा ग्रहण करते थे। विदेह के राजा जनक, प्रवाहन जावाली के कई देश के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु की कथाएं उपनिषदों में विद्यमान हैं, जिनमें इनके ज्ञान और विद्वता का उल्लेख किया गया है। स्वत केतु के पिता ब्राह्मण उद्दालक पांचाल के क्षत्रिय राजा प्रवाहन जावाली के पास ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से गए थे। इस प्रकार जो अन्य ब्राह्मण कुमार राजा अश्वपति आदि के पास विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे, उनकी कथाएं भी प्राचीन साहित्य में दी गई हैं। ब्राह्मण गुरु ऐसे बालकों को भी शिक्षा देने में संकोच नहीं करते थे जिनके कुल गोत्र आदि का कुछ भी पता ना हो। छांदोग्य उपनिषद का कथा आती है कि सत्यकाम जावाल जब आचार्य गौतम के पास विद्या अध्ययन के लिए गया तो आचार्य ने उसके पिता के संबंध में प्रश्न किया, पर इस सत्यकाम ने उत्तर दिया कि उसे न अपने पिता का नाम ज्ञात था और न अपने गोत्र का ही पता था, क्योंकि उसकी माता परिचारिका के रूप में अनेक घरों में कार्य करती थी और तभी उसका जन्म हो गया था। सत्यकाम जावाल के कुल गोत्र का पता न होने पर भी गौतम ने उसे विद्याभ्यास कराना स्वीकार कर लिया और विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार करा के उसे अपना शिष्य बना लिया। ऐत्रेय ब्राह्मण का कर्ता महीदास किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इत्रा शूद्रदासी का पुत्र था, इसी कारण वह ऐत्रेय इत्रा का पुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ, पर अपनी योग्यता तथा विद्वता के कारण वह समाज में अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त कर सकने में समर्थ हुआ और ऐत्रेय ब्राह्मण की उसने रचना की। ऐत्रेय ब्राह्मण में कथा आती है कि एक बार ऋषि सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे। उस समय एलुप कवस नाम का एक व्यक्ति उनके बीच में आ बैठा। उसे देखकर ऋषियों ने कहा, यह दासी का पुत्र अब ब्राह्मण है, हमारे बीच में कैसे बैठ सकता है? पर परिचय होने पर ऋषियों ने बाद में कहा, यह तो परम विद्वान है, देवता भी इसे जानते हैं। यह कवस एलुस ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनेक सूक्तों की ऋषि भी हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अनेक सूक्तों का ऋषि कछिवान भी श्रोसिक नाम की सुद्रा का पुत्र था। एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार राजा शांतनु के भाई देवापी ने यागिक अनुष्ठान में दक्षता प्राप्त करके ब्राह्मण पद प्राप्त कर लिया था और राजन्य शांतनु के यज्ञ करवाए थे। इस युग में विविध वर्णों में विवाह भी संभव था। महर्षि च्यवन के राजन्य सरयाति की कन्या के साथ विवाह किया था। महर्षि च्यवन ने राजन्य सरयाति की कन्या के साथ विवाह किया था। च्यवन ब्राह्मण थे। इसी प्रकार के कितने ही उदाहरण प्राचीन अनुश्रुति में विद्यमान हैं। इससे स्पष्ट है कि वर्ण भेद ने अभी ऐसा रूप प्राप्त नहीं किया था कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न हुए बिना आर्य विषह का कोई व्यक्ति इन वर्णों में सम्मिलित न हो सके। सूत्र ग्रंथों के काल में वर्ण भेद। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात सूत्र ग्रंथों की रचना हुई जो तीन प्रकार के हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इनके अध्ययन से सूचित होता है कि इनकी रचना के काल में वर्ण भेद का और अधिक विकास हुआ। अब ब्राह्मणों को अन्य सब की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना जाने लगा। गौतम धर्म सूत्र के राजा अन्य सब गौतम धर्म सूत्र के अनुसार राजा अन्य सबसे तो श्रेष्ठ होता है पर ब्राह्मणों से नहीं। ब्राह्मणों का सत्कार करना राजा का कर्तव्य है। यदि कोई ब्राह्मण आ रहा हो तो राजा को उनके लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। धर्म सूत्रों में ब्राह्मण को अवध्य, अदंडे, अबहिष्कार्य और अबंधन कहा गया है और ब्रह्म हत्या को घोर पाप प्रतिपादित किया गया है। यह भी व्यवस्था की गई है कि ब्राह्मण से कोई कर न लिया जाए। अन्य सबसे तो षड भाग राजकीय कर के रूप में लिए जाने का विधान है पर ब्राह्मण से नहीं, क्योंकि वह वेद पाठ करता है और विपत्तियों का निवारण करता है। इस युग में ब्राह्मण वर्ण का आधार जन्म से माने जाने लगा था, इसीलिए विशेष अवस्थाओं में ब्राह्मणों को यह अनुमति थी कि वे अन्य वर्णों के कार्य भी कर सके। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार संकट की दशा में ब्राह्मण के लिए शस्त्र धारण करना समुचित माना गया है। केवल क्षत्रियों के कर्म ही नहीं अपितु वैश्यों के कर्म भी वे संपादित कर सकते थे। ब्राह्मण के लिए क्षत्रियों तथा वैश्यों के कर्म कर सकने की अनुमति उसी अवस्था में सार्थक समझी जा सकती है जबकि ब्राह्मण वर्ण का आधार जन्म हो। समाज में क्षत्रियों का स्थान ब्राह्मणों से नीचे था। बाह्य और आभ्यंतर शत्रुओं से जनता की रक्षा करना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना और देश का शासन करना क्षत्रियों के कार्य थे, पर इनके लिए ब्राह्मण वर्ग के सहयोग की आवश्यकता स्वीकार की जाती थी। ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, यह विचार वैदिक युग में भी विद्यमान थी। सूत्र ग्रंथों में भी अनेक स्थानों पर राजा और क्षत्रिय वर्ग के लिए ब्राह्मणों के सहयोग की बात कही गई है। वैश्य वर्ग के लोगों का कार्य कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और महाजनी माना जाता था, पर संकट के समय शस्त्र धारण की भी उन्हें अनुमति थी। समाज में शूद्रों की स्थिति अत्यंत हीन थी। उनका एकमात्र कार्य तीन उच्च वर्णों के लोगों की सेवा करना ही समझा जाता था। उनकी स्थिति दासों के सदृश थी, इसीलिए गौतम धर्म सूत्र में कहा है कि उच्च वर्णों के लोगों के जो जूते, वस्त्र आदि जीर्ण शीर्ण हो जाए उन्हें शूद्रों के प्रयोग के लिए दे दिया जाए और उनके भोजन पात्रों में जो जूठन शेष बच जाए शूद्र उस द्वारा अपनी क्षुधा को शांत करे। शूद्रों को इतना हीन माना जाने लगा था कि उनकी हत्या कर देने पर उसी दंड की व्यवस्था की गई थी जो कि कौवे, मेढक, कुत्ते आदि की हत्या के लिए विहित था। शूद्र को न वेद पढ़ने का अधिकार था और न यज्ञ करने का। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार यदि कोई शूद्र वेद मंत्र सुन ले तो उसके कानों में शीशे या लाख को पिघला कर डाल देना चाहिए और यदि कोई शूद्र वेद मंत्रों का उच्चारण कर ले तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। उसके लिए उपनयन संस्कार वर्जित था, अतः उसे विद्या अध्ययन का अवसर ही प्राप्त नहीं हो सकता था। किसी भी प्रकार की विद्या व शिल्प की शिक्षा प्राप्त न कर सकने के कारण शूद्रों के लिए यही एकमात्र मार्ग रह जाता था कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य परिवारों में सेवा द्वारा अपना जीवन निर्वाह किया करें। समाज में सब वर्णों के लोगों की न केवल स्थिति एक सदृश नहीं थी अपितु उनके लिए कानून भी पृथक पृथक थे। एक ही अपराध करने पर विविध वर्णों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न दंडों की व्यवस्था थी। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार ब्राह्मण का अपमान करने पर क्षत्रियों को 100 कारसापन जुर्माना करने का विधान था, पर यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करे तो उस पर केवल 50 कारसापन जुर्माना किया जाता था। ब्राह्मण द्वारा वैश्य को अपमानित करने पर केवल 25 कारसापन दंड की व्यवस्था थी। अपस्तंभ धर्म सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं। उनमें पहले के वर्ण क्रम से जन्म के आधार पर पीछे वर्णों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार यह सर्वथा स्पष्ट है कि सूत्र ग्रंथों के रचना काल में भारत में वर्ण भेद भलीभांति विकसित हो चुका था और वर्णों का आधार जन्म को माना जाने लगा था, पर इस युग में भी यह असंभव नहीं था कि निचले वर्ण का कोई व्यक्ति धर्माचरण द्वारा अपने से उच्च वर्ण को प्राप्त कर सके। इसीलिए आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया है कि धर्माचरण द्वारा निकृष्ट वर्ण का व्यक्ति अपने से उच्च वर्ण को प्राप्त कर सकता है और अधर्म का आचरण करने से उत्कृष्ट वर्ण का व्यक्ति अपने से निचले वर्ण का हो सकता है। दूसरा, आश्रम व्यवस्था। चार आश्रम। प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन में चार वर्णों के समान चार आश्रमों का भी बहुत महत्व था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम माने जाते थे। इन आश्रमों की कल्पना का आधार यह विचार था कि प्रत्येक मनुष्य चार ऋण लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक मनुष्य देवताओं, ऋषियों, पितरों और अन्य मनुष्यों के प्रति ऋणी होता है। सूर्य, वरुण, अग्नि आदि देवताओं का मनुष्य ऋणी होता है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से वह प्रकाश, जल, उष्णता आदि प्राप्त करता है। इनके बिना वह अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह देवताओं की पूजा करे, यज्ञ आदि द्वारा उनके ऋण को अदा करे, अपने साथ के अन्य मनुष्यों के ऋण को अदा करने के लिए अतिथि यज्ञ का विधान था। ऋषियों के प्रति मनुष्य का जो ऋण है उसे चुकाने का यही उपाय था कि मनुष्य उस ज्ञान को कायम रखे व उसमें वृद्धि करे जो उसे पूर्व काल के ऋषियों की कृपा से प्राप्त हुआ था। इसके लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ज्ञान उपार्जन करना चाहिए और बाद में वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर अपने ज्ञान को ब्रह्मचारियों व अंतेवासियों को प्रदान करना चाहिए। माता पिता अर्थात पितर के प्रति मनुष्य का जो ऋण है उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके ही अदा किया जा सकता है। गृहस्थ धर्म से संतानों उत्पत्ति करके अपने पितरों के वंश को जारी रखना व वंश तंतु का उच्छेद न होने देना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य माना जाता था। संन्यास आश्रम में प्रवेश करके मनुष्य अपने साथी मनुष्य का उपकार करने में ही अपने सारे समय को व्यतीत करता था और इस प्रकार वह मनुष्य ऋण को सदा अदा कर इस प्रकार वह मनुष्य ऋण को अदा करता था। पर हर कोई मनुष्य सन्यासी नहीं हो सकता था। जो व्यक्ति विशेष रूप से ज्ञानवान हो, सब प्राणियों में आत्मभावना रखने की सामर्थ्य जिसमें हो, वही सन्यासी बनकर भैक्षचर्या अर्थात भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करने का अधिकारी था। सन्यासी किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करता था। उसका कर्तव्य था कि सर्वत्र भ्रमण करता हुआ लोगों का उपकार करे, इसीलिए उसे परिव्राजक भी कहते थे। वानप्रस्थ लोग शहर या ग्राम से बाहर आश्रम बनाकर रहते थे और वहां ब्रह्मचारियों को विद्यादान करते थे। ब्रह्मचारी अपने घर से अलग होकर वानप्रस्थी गुरुओं के आश्रम में निवास करते थे और गुरु सेवा करते हुए ज्ञान का उपार्जन करते थे। गृहस्थ आश्रम को उचित दृष्टि से देखा जाता था। वशिष्ठ सूत्र में लिखा है कि जिस प्रकार सब बड़ी और छोटी नदियां समुद्र में जाकर विश्राम पाती हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों के मनुष्य गृहस्थ पर आश्रित रहते हैं। जैसे बच्चे अपनी माता की रक्षा में ही रक्षित रहते हैं, वैसे ही सब भिक्षुक व सन्यासी गृहस्थों की ही रक्षा में रहते हैं। प्रत्येक आर्य से यह आशा की जाती थी कि वह अपना सारा जीवन सांसारिक झंझट में ही न बिता दे, अपितु ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी होकर अपना जीवन बिताए। मानव जीवन का अंतिम ध्येय मोक्ष की प्राप्ति को माना जाता था, पर सांसारिक सुख भी हे नहीं समझे जाते थे। योग शास्त्र में धर्म का लक्षण इस प्रकार किया गया है, यतो भयु दयनि श्रेयस सिद्धि स धर्म। यतो भयुदयनि निः श्रेयस सिद्धि स धर्म। जिस द्वारा सांसारिक अभ्युदय और मोक्ष की सिद्धि हो वही धर्म है। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य सांसारिक अभ्युदय करे पर उसी को जीवन का परम लक्ष्य न मान ले, संसार का भोग कर स्वेच्छापूर्वक उसका त्याग कर दिया जाए और जीवन का अंतिम भाग अध्यात्म चिंतन और परोपकार में व्यतीत किया जाए। इसी प्रयोजन से मानव जीवन के 100 वर्षों को 4 भागों या आश्रमों में विभक्त किया गया है। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम के थे, जिसमें मनुष्य को बुद्धि के विकास, शिक्षा के ग्रहण और शक्ति के संचय के लिए उद्योग करना था। 25 वर्ष गृहस्थ जीवन के लिए नियत थे, जिसमें मनुष्य को धर्मपूर्वक धन का उपार्जन तथा सांसारिक सुखों का भोग करना होता था। पर इस जीवन की एक सीमा थी, 50 वर्ष का हो जाने पर गृहस्थ से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह वन में जाकर आरण्यक आश्रमों में निवास करे और वहां ब्रह्मचारियों को विद्यादान करने के साथ साथ अध्यात्म चिंतन में अपना समय लगाए। 75 साल का हो जाने पर विशेष रूप से ज्ञानी तथा समर्थ व्यक्तियों से यह आशा की जाती थी कि वे अपना शेष जीवन परोपकार में व्यतीत करें और सब कोई को अपने अपने कर्तव्यों का बोध कराए। संन्यास आश्रम में मनुष्य को तप, त्याग और संयम का चरम आदर्श अपने सम्मुख रखना होता था। वह पूर्णतया अकिंचन होकर भैक्षचर्या द्वारा जीवन निर्वाह करता था और सब इच्छाओं, वासनाओं और आकांक्षाओं से ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता था। सब प्रवृत्तियों को त्याग कर सन्यासी निवृत्ति मार्ग को अपनाता था और इस प्रकार वह उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में समर्थ होता था जिसे भारत के प्राचीन चिंतक मानव जीवन का परम अंतिम उद्देश्य मानते थे और जिसे वे मोक्ष कहते थे। आश्रम व्यवस्था का विकास। वैदिक साहित्य में चारों आश्रमों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता, यद्यपि वहां ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचर्य शब्द अनेक स्थलों पर आए हैं और यति शब्द का भी प्रयोग हुआ है। यति का अभिप्राय सन्यासी से ही है। गृहस्थ के लिए ऋग्वेद में गृहपति शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्व वेद में भी गृहस्थ के लिए गृहपति शब्द ही प्रयुक्त है, पर वैदिक संहिताओं के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों के रूप में जो प्राचीन वैदिक साहित्य है, उसमें 4 आश्रमों की सत्ता के अनेक संकेत विद्यमान हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के एक संदर्भ में यह कहा गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण कर गृही बने अर्थात गृहस्थ बने, गृही जीवन बिताकर वनी अर्थात वनप्रस्थ बने और फिर वनी होने के बाद परिव्राजक अर्थात सन्यासी बन जाए। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रीय से कहा है कि मैं अब परिव्राजक बन रहा हूँ, पर जिन संज्ञाओं द्वारा बाद में 4 आश्रमों का प्रतिपादन किया जाने लगा उनका सर्वप्रथम उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। संभवतः प्राचीन भारत में 4 आश्रमों की कल्पना धीरे धीरे विकसित हुई थी और उपनिषदों के निर्माण काल तक आश्रम व्यवस्था का पूर्ण रूप से विकास हो गया था। यही कारण है कि सूत्र ग्रंथों, पुराणों, महाभारत और स्मृतियों में 4 आश्रमों का स्पष्ट तथा विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है और यह भी बताया गया है कि चारों आश्रमों में के क्या क्या धर्म व कर्तव्य हैं। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ प्रहलाद के पुत्र कपिल द्वारा किया गया था। वहां लिखा है कि अब देवताओं की स्पर्धा में मनुष्यों ने इसका सूत्रपात किया था। देवता यह मानते थे कि आश्रम व्यवस्था उन्नत और विकसित समाज के लिए आवश्यक है, अतः दूसरों को भी उसे अपनाना चाहिए। चातुर्य वर्ण के समान 4 आश्रमों का उद्गम भी प्राचीन चिंतकों ने ब्रह्मा से माना है। महाभारत, ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में आए एक श्लोक के अनुसार ब्रह्मा द्वारा 4 वर्णों के समान 4 आश्रमों की भी स्थापना की गई थी। इन आश्रमों के नाम वहां गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और भिक्षुक दिए गए हैं। सन्यासी के लिए ही वहां भिक्षुक शब्द का प्रयोग हुआ है। मनुष्य अपने जीवन की किस आयु में किन किन कर्मों का संपादन किया करे, इसका स्पष्ट रूप से निरूपण करने के लिए ही मानव जीवन को चार भागों में विभक्त किया गया। उन्हें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नाम दिए गए और उनके कर्म निर्धारित कर दिए गए। राजा का यह कर्तव्य माना जाता था कि मनुष्यों को अपने अपने वर्ण धर्मों का पालन करने के साथ साथ आश्रम धर्मों के पालन के लिए भी प्रेरित करे, ताकि सब कोई अपने अपने आश्रम धर्मों में भी स्थिर रहे। इसीलिए ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि राजा सगर के राज्य में आश्रम धर्मों का अविकल रूप से पालन किया जाता था और छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आश्रम धर्म के पालन से पुण्य लोक की प्राप्ति होती थी। यह माना जाता था कि यदि कोई मनुष्य आश्रम धर्म से भ्रष्ट हो जाए, उसका पालन न करे, तो उसे यातनाएं सहनी पड़ती है। वायु पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो मनुष्य आश्रम धर्म से मुक्त चित हो जाए या उसका मन आश्रम धर्म के पालन में न लगे, उसे कुंभपाक नरक में जाना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि उत्तर वैदिक काल तक भारत में आश्रम व्यवस्था भली भांति स्थापित हो चुकी थी और इस देश के चिंतकों की सम्मति में समाज के लिए वर्ण धर्म के समान आश्रम धर्म का पालन भी बहुत आवश्यक हो गया था।